सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः प्रणामो अरिहन्तां प्रणामो सिद्धाणं नमो आर्यानं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुञ्जकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदं।
समयसार जो कुंदकुंदा आचार्य भगवान का शास्त्र है, उस गाथा उस शास्त्र के हम 19 नंबर की गाथा देख रहे हैं। और इस 19 नंबर की गाथा में उत्थानिका में ऐसा लिखा है कि यहाँ ऐसा पूछा जा रहा है कि यह आत्मा कब तक यानी क्या सुधी अप्रतिबुद्ध छेते कहो, यानी कोई भी जीव अप्रतिबुद्ध यानी क्या है कि मिथ्यात्वी, यानी जिसको मिथ्या ज्ञानी वो कब तक रहेगा, मिथ्यात्वी कब तक रहेगा। यहाँ तो पूछा जा रहा है काल की अपेक्षा से प्रश्न, तो उसका उत्तर क्या देते हैं कि कल हमने पढ़ा था, कहते हैं कि जब तक यह जीव मैं नो कर्म और कर्म ही हूँ अथवा ये कर्म और नो कर्म मेरे हैं, ऐसी बुद्धि इस जीव की जब तक रहेगी तब तक वह अज्ञानी रहेगा, और ये मान्यता जब छोड़ेगा तब वह ज्ञानी होगा। तो अप्रतिबुद्ध क्या सुधी रहे, तो कब तक, तो जब तक वह कर्म और नो कर्म में एकत्व बुद्धि करता है, स्वामित्व बुद्धि करता है, क्योंकि यह जीव अजीव अधिकार है। एक बात तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, जीव और अजीव अधिकार में यहाँ इस जीव की एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि यानि अहम बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि इसी की बात ली है। और कर्ता कर्म अधिकार में वहाँ कर्तृत्व बुद्धि यानि पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि और पर पदार्थों की भोक्तृत्व बुद्धि, इस पर विशेष चर्चा की गई है। वास्तव में ये दोनों ही मिथ्यात्वी के ही लक्षण हैं कि जो पर पदार्थ में अपनत्व करता है, पर पदार्थ में स्वामित्व करता है, या पर पदार्थ में कर्तृत्व या भोक्तृत्व बुद्धि रखता है, तो वह मिथ्यात्वी है। लेकिन यहाँ हमने देखा है ये जो पहला जो हमने शुरू किया था वह जीव अजीव अधिकार है। यह जीव अजीव अधिकार का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले दी थी कि नहीं मुझे याद नहीं है। ये एक्चुअली जब अमृत चंद्राचार्य ने इस पर टीका लिखने की शुरुआत की थी तब उन्होंने ये कुछ ड्रामा है, नाटक है, ये स्टेज है, ऐसा कल्पना करके, ऐसी कल्पना करके यह जो जीव जो है और अजीव है, वह जो मिथ्यात्व जो है वह इन्हीं का रूप लेके एंट्री करता है, स्वांग लेता है। वह कैसा, जीव का और अजीव का। पहले जमाने में ऐसा था कि लोग इतने अभिनय में उत्कृष्ट यानी बेस्ट परफॉर्मेंस देते थे कि कोई स्त्री का पार्ट लेवे तो वह पुरुष है ऐसा समझ में भी नहीं आवे। या तो इसको स्वांग कहते हैं या जिसको हम कहते हैं कि भाई जो वेश, अभी जैसा आजकल के जमाने में भी हम देखते हैं कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन के आता है और आपके पास ये है क्या, वो है क्या, वो है क्या, ऐसा पूछेगा तो हम डर के मारे, अगर हमारे मन में कोई चोर हुए या हमारे खोटी हुए तो हम उसको अच्छा चाहिए पैसा लो, जाओ जाओ जाओ। ऐसा कोई आता है कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो वो ऐसा भेज ले, लेकिन जब हम पहचानते हैं कि ये पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है और हम पुलिस को बुलाने की कोशिश करेंगे और उसके ख्याल में आ गया कि इसने मुझे पहचान लिया है तो चलते बनता है। वैसे यहां जब यह आत्मा, यह जीव और अजीव, यह स्वांग है, असल बात नहीं है, ऐसा जब जानेगा तो जीव अजीव निष्क्रांत होते यानी स्टेज पर से निकल जाते हैं, ख्याल में। तो इस तरह से उन्होंने यह बात बताई है कि एज इफ के एक नाटक है और ये इसी का मतलब, अब अगर हमको आगे देखना है तो ये बनारसी दास जी ने नाटक समय सारा ऐसा लिखा। इसका पहला नाम तो समय प्राभृत था, ख्याल में। तो जब उन्होंने नाटक समय सार लिखा तो उसका नाम सब बदल के समय सार रखा गया। तो पहले तो वो ऐसा कहते कि स्टेज है, ऐसा है, वैसा है, फिर उसी को आगे जाके अखाड़ा कहने लगे। अखाड़ा का अर्थ क्या होता है, ये नाटक का जो कोई मतलब स्टेज है, उस जमाने में अखाड़ा कहते होंगे, अभी तो पहलवान लोग जहाँ कुश्ती खेलते हैं उसको अखाड़ा कहते हैं। ये हर समय अलग अलग अर्थ चालते हैं। तो यहाँ तो ये समझा रहे हैं कि यहाँ जीव और अजीव इनमें जो एकत्व बुद्धि करता है या इसमें ममत्व बुद्धि करता है यानी अहम बुद्धि
शरीर और,
हाँ जी,
शरीर और नौकर्म,
हाँ नहीं नहीं ये मिथ्या, जीव और अजीव यानी जीव अजीव में, अजीव में तो दोनों बात आ गई ना, शरीर और यानी नौकर्म और कर्म। तो मैं तो ये जनरल बात बता रहा था, अभी ये इस गाथा की नहीं, मैंने ये बताना है कि जब यह जीव अजीव में एकत्व बुद्धि करता है या स्वामित्व बुद्धि करता है तो कैसी खोटी है, ये बात बताने का कार्य जीव अजीव अधिकार करेगा। तो ये दो बातें बताई, इसका अर्थ ऐसा थोड़ी है कि वो कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखता है, भोक्तृत्व बुद्धि, उसकी धुलाई बाद में करेंगे, कब, कर्ता कर्माधिकार में, तब वहाँ ये जो बात है अहम बुद्धि या ममत्व बुद्धि या मम बुद्धि जिसको हम कहते हैं वो बात अभी इसमें करेंगे। अभी यहाँ पर पूछा गया कि यह जीव अप्रतिबुद्ध यानी मिथ्यात्वी कब तक रहेगा, तो कहते जब तक वो नो कर्म और कर्म इनमें एकत्व बुद्धि रखता है यानी वही मेरे हैं या मैं ही वह हूँ। बात ख्याल में आ गई, तो क्या कहा देखो, नो, अभी गुजराती पढ़ रहा हूँ 19 नंबर की जो अपनी गाथा है, नो कर्म कर्मे हूँ यानी मैं कर्म हूँ या नो कर्म हूँ मैं ही हूँ। और ये कैसी मान्यता रखता है, इसकी बात तो हमने कल की थी, अब दोहराने से कोई उसमें ये नहीं है। और वड़ी क्या है कि कर्म ने नो कर्म चे हूमा यानी मेरे में ही यानी मैं ही, ये मेरे हैं तो ये मेरे में है, ऐसा तो क्या है कर्म और नो कर्म है। ए बुद्धि जा लगी जीवनी अज्ञानी त्या लगी ते रहे, तब तक वह जीव अज्ञानी ही रहेगा। ये बात बहुत आसान है समझने के लिए, मानने के लिए थोड़ा सा कठिन है। क्यों, अब आगे बढ़ते हैं गाथार्थ। यावत यानी जा सुधी आ आत्मा ने कर्मनी यानी ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, अभी इसमें भाव कर्मों को भी ऐड किया उन्होंने, बहुत अच्छा, भाव कर्म च अने नो कर्मणि शरीर आदि नो कर्म मा अहम एटले आ हूं छू च एटले अने अहकम कर्म ये अहकम गलत है ना जो
आगे हूँ माँ लिखा है ना वैसे अहकम
अचम इति अहकम
मेरे में
अहकम कर्म नो कर्म इति हूँ माँ एटले आत्मा माँ आ नो कर्म छे एशा खलु बुद्धि ही एवी बुद्धि छे तावत त्यां सुधी आ आत्मा अप्रतिबुद्ध भवती एटले छे। यहाँ तो उन्होंने कोई काल का दर्शक ऐसी बात नहीं बताई है, उत्तर दिया है भाव दर्शक। यानी भाव जब तक ऐसा यह जीव रखता है तब तक तो वह अप्रतिबुद्ध यानी मूढ़ मिथ्यात्वी अज्ञानी मिथ्या ज्ञानी जो भी आपको बोलना है बता सकेंगे। अब टीका, ये तो मैंने बहुत बार बताया था, आपको याद भी होगा कि हमारे पास एक कांति भाई करके आते थे, ऐसे दूर से हमारे रिश्ते में ही आते थे। तो वो अप्रतिबुद्ध, तो जब भी आगे बहुत बार आती है कि हे अप्रतिबुद्ध, तो ये अप्रतिबुद्ध का क्या अर्थ है? तो ये भैया ऐसा ऐसा है, हाँ तो ये महामूढ़ मिथ्यात्वी ऐसा कहते, इससे तो ये अच्छा लगता है, ये रिस्पेक्टेबल गाली है बोलते। अर्थ तो वही है लेकिन शुगर कोटेड है। तो चले, वे अभी है नहीं लेकिन उनकी बार बार याद तो अवश्य आती है, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। ये प्रीमियर की ह्यूम पाइप है ना, उसके वो मैनेजर थे, नॉट ह्यूम पाइप, एक्मे फाउंड्री, नहीं मैनेट फाउंड्री, एक्मे दोनों गलत है, मैनेट फाउंड्री जो भी है, बहुत बड़ा मतलब आदमी था। हाँ जे जेवी रीते, अभी पहले उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में तथा पोहड़ू तलियु पेटाळ आदि ना आकारे परिणत थयेला पुद्गलना स्कंदों में आ घड़ो छे। अभी क्या कहते हैं, ये आपके यहाँ तो हिंदी में लिखा है ना, तो आपको समझ गए प्रवीण, आप समझी गए ये बात? देखो क्या समझा रहे हैं कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह है, और क्या है पोड़ू यानि रुंद मतलब ऐसा, हाँ हाँ तड़ियु यानि जिसके नीचे बेस है और पेटाड़ यानि जैसा गोल जिसका आकार है आदि ना आकार है परिणत थेला पुद्गल ना स्कंदों में, ये जो क्या हो रहा है ये तो पुद्गल के स्कंद है, वो इस तरह से विशिष्ट प्रकार से वह परिणत हुए हैं। आ घड़ो छे यानी ये मटका है एम अने घड़ा मा आ स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावो तथा पोहड़ू तड़ियो पेटाळ आदि ना आकारे परिणत पुद्गल स्कंदो छे एम वस्तुना अभेद थी अनुभूति थाय छे। यानी जो पुद्गल स्कंद इस रूप से परिणत हुए हैं उसको घड़ा कहेंगे, या घड़े में क्या क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसमें तलिया है, उसमें जाड़ापन है, उसमें गोलाकार है, यानी दोनों ही एक दूसरे से एक ही के दो अलग अलग बातें बताई है। तो कहते हैं कि परिणत पुद्गल स्कंदो चेम वस्तुना अभेद थी अनुभूति थाई छे, यानी उसको हम अभेद से देखेंगे तो दोनों बातें एक ही है। तेवी रीते कर्म मोह आदि अंतरंग परिणामों यानी ये भाव कर्म तथा नो कर्म यानी शरीर आदि बाह्य वस्तुओं के जेवो बधा पुद्गलना परिणाम छे अने आत्मानो तिरस्कार करनारा छे। यानी ये सारी जो बातें हैं, कौन सी, द्रव्य कर्म नो कर्म और भाव कर्म, यहाँ भाव कर्म यानी मोह आदि जो परिणाम है, राग द्वेष के जो परिणाम है, शुभ अशुभ परिणाम है, इनको भी पुद्गल का बताया है, अभी हमने देखा था ना वो भी। ये बात तो क्या कहते हैं, देखो फिर से कि ये ऊपर से चौथी लाइन कि तेवी रीते, कौन सी, पांचवी है क्या, पांचवी, अच्छा तेवी रीते मोह कर्म यानी ये द्रव्य कर्म, मोह आदि अंतरंग परिणामों ये भाव कर्म तथा नो कर्म यानी कौन शरीर आदि बाह्य वस्तुओं के जेवो बधा उद्गलना परिणाम छे अने आत्मानो तिरस्कार करनारा छे। आत्मानो तिरस्कार करनारा छे यानी आत्मा को बताने वाले नहीं है, उनसे ये विरुद्ध जाति के हैं। तेमना मा आ हूँ छूं अने आत्मा मा आ कर्म मोह आदि अंतरंग तथा नो कर्म शरीर आदि बहिरंग आत्म तिरस्कारी एटले आत्मानो तिरस्कार करनारा पुद्गल परिणामों छे एम वस्तुना अभेद थी जा सुधी अनुभूति छे त्या सुधी आत्मा अप्रतिबुद्ध छे। अभी इन शॉर्ट ये बताना चाहते हैं कि जब तक इस जीव को यह जो मेरे में यानी मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे में ये द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म है या ये सारे मेरे हैं ऐसी जब तक बुद्धि रहेगी तब तक वह अप्रतिबुद्ध है। वहाँ जैसा घड़े के अंदर बताया कि दोनों एक ही है वैसे ये दोनों मैं ही हूँ ऐसा मानता है, ये मेरे में है या ये मेरे है तो कहते अप्रतिबुद्ध है। अने जारे कोई वक्ते जेम रूपी दर्पणनी स्वपर्णा आकारनो आकार बताया वहाँ उस घड़े का आकार बताया। वो जो आकार है वह तो मिट्टी का ही है ना, वैसे ये शरीर का जो आकार है वह भी लंबा चौड़ा आड़ा टेढ़ा मोटा जो भी होगा तो, लेकिन उसमें मेरापन है उसका। क्या हम नहीं मानते मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, नहीं अभी क्या है 6 महीने से तबीयत अच्छी नहीं, अभी दुबला हो गया हूँ जो भी है, लेकिन मेरे में मतलब साइज में ही अधिकत्व हो रहा है, वो मेरा ही हो रहा है ऐसा हम मानते हैं क्यों। हाँ तो उसमें वो पोड़ाई वगैरह जो बात है वो किससे कंपेयर कर रहे हैं ये बात पूछनी थी। उन्होंने बताया ना देखो बहिरंग क्या नो कर्म आदि बहिरंग यानी ये बाह्य में है ना, वो नो कर्म दिख रहे हैं कर्म भी नहीं दिख रहे और भाव कर्म भी हमें इंद्रियों से नहीं जाने जाएंगे, कर्ण इंद्रियों से समझेंगे कि भाई उसने राग किया तो मन में ही मन में कोई गुस्सा कर रहा हो तो पता ही नहीं लगे इस अपेक्षा से। लास्ट लाइन अने जारे कोई वक्ते जेम रूपी दर्पणनी स्वपर्णा आकारनो प्रतिभास करनारी स्वच्छता ज छे अने उष्णता तथा ज्वाला अग्निनी छे तेवी रीते अरूपी आत्मानी तो पोताने ने परने जाननारी ज्ञातृता एटले ज्ञातापणूज छे अने कर्म तथा नो कर्म पुद्गलना छे एम पोता थीज अथवा परना उपदेश थी जेनु मूल भेद विज्ञान छे एवी अनुभूति उत्पन्न थशे त्यारे ज आत्मा प्रतिबुद्ध थशे। अभी दोनों जगह हमें एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है, अभी क्या समझाते हैं देखते हैं हम फिर से। देखो क्या कहते हैं अभी कभी बाय चांस क्या लिखा है यहाँ अने जारे कोई वक्ते यानी कब होगा उसकी गारंटी नहीं है, अब क्या होना है वो बता दे कि जारे कोई वक्ते तो उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जेम रूपी दर्पणना स्वपर्णा आकारनो प्रतिभास करनारी स्वच्छता ज छे यानी ये दर्पण का स्वभाव क्या है के स्व पर को प्रकाशित करना यानी हम दर्पण में जाते हैं तो उसमें जो झलकते वो पदार्थ तो हमें दिखते हैं, दर्पण भी तो दिख रहा है ना, ये जो ऐसा कोई सरफेस होगा तो इसको हम दर्पण नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है, स्वच्छता ही नहीं उसमें, तो वो स्वच्छता कैसी है स्व को भी और पर को बताने वाली है तो वैसी स्वच्छता। और क्या है दूसरा उदाहरण क्या है उष्णता तथा ज्वाला अग्नि नीचे वो तो उसका स्वभाव है उष्ण और उष्णपना और ज्वाला जो है वो तेवी रीते अरूपी आत्मानी तो पोता ने परने जाननारी ज्ञातृता एटले ज्ञातापणूज छे ये जो दर्पण के साथ आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उसकी तुलना की है, कंपैरिजन उससे की है। तो आत्मा कैसा है कि स्व को भी जाने और पर को भी जाने, ऐसा ज्ञातापना उसमें है। ये ज्ञातृत्व ज्ञातृत्ता बताए, जैसे ता का अर्थ क्या, पना त्व, जैसे हम कहते हैं माता और मातृत्व, वैसे यहाँ ज्ञाता और ज्ञातृत्व या ज्ञातृत्ता, यानी ज्ञातापणुच्छे। क्या क्या कहते हैं, आत्मा कैसा है, अरूपी है और फिर भी स्व और पर को जानने का ज्ञानपना उसमें है, जाननपना है। अनेक कर्म तथा नो कर्म पुद्गलना छे एम पोता थी अथवा परना उपदेश छे, यानी जैसा जिसका स्वभाव उसके साथ ही होता है, अन्य के साथ नहीं है, ऐसी जब इस जीव को ये कर्म और नो कर्म मेरे से भिन्न है और मैं सिर्फ जानन देखन स्वभावी हूँ, ऐसा जब उसको हमने दो शब्द देखे थे। अब यहाँ उन्होंने क्या बताया, पोता थी अथवा परना उपदेश थी, इसके लिए हमने दो शब्द कल देखे थे। किसको याद है, मंदा याद है तुम्हें? हाँ बोलो, जरा जोर से बोलना बहन, फिर आप बोलते, इन्होंने बोला था सुनाई नहीं दिया। हाँ कौन से, नहीं उसके लिए दूसरे शब्द हमें चाहिए, बराबर है, लेकिन वो सम्यक दर्शन के भेद है, या हम दूसरा पहा। हाँ स्वयं बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व, तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, जेम पोता थी, यानी ये स्वयं वो, तो उसकी कंपैरिजन हमने सम्यक दर्शन के दो भेदों से की थी, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, अथवा परना उपदेश थे, तो बोधित बुद्धत्व ये जेनु मूल भेद विज्ञान छे एवी अनुभूति, यानी उसने स्वयं से या दूसरे के कहने पर क्या किया के भेद विज्ञान किया। ये भेद विज्ञान जेनु मूल छे कोनु के उपदेश ना कारणे एवी अनुभूति उत्पन्न थशे त्यारेज, यानी मैं इन सब पदार्थों से जुदा हूँ भिन्न हूँ, ऐसा उसको कोई किसी के कहने पर या अपने स्वयं के कारण से जब ऐसा वो भेद विज्ञान करेगा और वो क्या होगा, अपने आत्मा की अनुभूति करेगा, त्यारेज आत्मा प्रतिबुद्ध थशे, तभी वह ज्ञानी कहलाएगा। अभिभावत जेम स्पर्शादिमा पुद्गलनो अने पुद्गलमा स्पर्शादिनो अनुभव थाय। अभी यहाँ वो स्पर्श यह पर्याय है, ख्याल में है? तो पर्याय और द्रव्य दोनों एक ही है ऐसा बताया कि जहाँ पुद्गल है वहीं वो स्पर्श है और जहाँ स्पर्श है वही पुद्गल है, दोनों अभेद है ऐसा बताना चाहते हैं। जेम स्पर्शादिमा पुद्गलनो अने पुद्गलमा स्पर्शादिनो अनुभव थाय छे, अर्थात बनने एक रूप अनुभवाय छे, तेम ज्यां सुधी आत्मा ने कर्म नो कर्म मा आत्मानी अने आत्मा मा कर्म नो कर्मानी भ्रांति थाय छे, क्योंकि दोनों एक है नहीं फिर भी वह एक ही मान रहा है तो वह भ्रांति है, मिथ्या मान्यता है। अर्थात बनने एक रूप भासे छे त्यां सुधी तो ते अप्रतिबुद्ध छे, अने जारे ते एम जाने के आत्मा तो ज्ञाता छे अने कर्म नो कर्म पुद्गलना छे, त्यारे ज ते प्रतिबुद्ध थाय छे। ये बहुत आसान है इसलिए मैं केवल पढ़ रहा हूँ, अभी इसको तो दो बार समझा दिया है आपको, और नहीं समझ में आया तो पूछना। हाँ जेम अरीसामा अग्निनी ज्वाला देखाय, क्या एम जनाय छे के ज्वाला तो अग्निमा ज छे, अरीसामा नथी पेठी, पेठी यानी घुसी हुई नहीं है, प्रवेश नहीं हुआ है, अरीसामा देखाई रही छे ते अरीसानी स्वच्छता ज छे। ये मैंने ऊपर गलत अर्थ किया था, यहां उन्होंने बराबर बताया, ज्वाला तो अग्निमा ज छे अरीसामा नथी पेठी, अरीसामा देखाई रही छे ते अरीसानी स्वच्छता ज छे, ते प्रमाणे कर्म नो कर्म पोताना आत्मामा नथी पेठा, आत्मानी ज्ञान स्वच्छता एवी ज छे के जेमा ज्ञेयनु प्रतिबिंब देखाय। ए रीते कर्म नो कर्म ज्ञेय छे તે પ્રતિભાસે છે, એવો ભેદ જ્ઞાનરૂપ અનુભવ, સોરી એવો ભેદ જ્ઞાનરૂપ અનુભવ આત્માને કાં તો સ્વયમેવ થાય અથવા ઉપદેશથી થાય, ત્યારે જ તે પ્રતિબુદ્ધ થાય છે. અભી હમ આગે ચલતે હૈ 51 પેજ પર, યે ગાથા 19 ટીકા ઉપરનું પ્રવચન જો લિખા હૈ ઉસકો દેખતે હૈ. ક્યાં સમજા રહે દેખે, અમૃતચંદ્રાચાર્ય દ્રષ્ટાંત આપે છે, જેવી રીતે સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ આદિ ભાવોમાં તથા પહોળું તળિયું પેટાળ આદિના આકારે, યે ઉસકે આકાર બતાએ કિસકે, ઘડે કે હા માટલા નો, કહે રે એમ, અને ઘડામાં આ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ આદિ ભાવો તથા પહોળું તળિયું પેટાળ આદિના આકારે પરિણત પૂતગલ સ્કંદો છે એમ વસ્તુના અભેદ અનુભૂતિથી અનુભૂતિ થાય છે, વસ્તુના અભેદથી અનુભૂતિ થાય છે, આ દ્રષ્ટાંત થયું. તેવી રીતે કર્મ મોહ શુભાશુભ રાગ આદિ અંતરંગ પરિણામો તથા નો કર્મ શરીરાદિ બાહ્ય વસ્તુઓ એ બધા પૂતગલના પરિણામ છે. જેમ સ્પર્શરસ ગંધ વર્ણ વર્ણમાં ઘડો છે અને ઘડામાં સ્પર્શરસ ગંધ વર્ણ છે, એમ પુણ્યપાપના અંતરંગ પરિણામ ભાવકર્મ અને જડકર્મ એટલે દ્રવ્યકર્મ તથા નો કર્મ શરીર મન વાણી ઇત્યાદિ બહિરંગ પૂતગલ પરિણામો છે. આહાહા, અંદરમાં દયાદાન વ્રત ભક્તિ આદિ જે રાગભાવ થાય તે બાહ્ય વસ્તુ છે, કેમ કે જેમ આત્મામાં જ્ઞાન અને આનંદ સ્વભાવ છે તેમ પુણ્યપાપના ભાવ તેનો સ્વભાવ નથી, એ આત્મા નથી. કેમકે એ બહિરંગ બતાવે ને દોનો કો, તો એટલે બતાવે કે એ આત્મા મેં નહીં હૈ. ભગવાન આત્મામાં અંતરંગમાં જે પુણ્યપાપ દેખાય છે તે જડકર્મ તથા શરીરાદિ નો કર્મ એ ત્રણેય પૂતગલ પરિણામો આત્માનો તિરસ્કાર કરનારા છે. એ કોણ સે તીન પરિણામ બતાએ, આપ બતાએંગે તેજલ, તીન બાતે કોણ સી બતાઈ અભી આપકો? બહુ અચ્છા, યાને આપ સમજ રહી હૈ, બહુ બઢિયા, ક્યુંકિ યે મામૂલી સી બાત લગતી હૈ લેકિન યે મૂળ બાત અગર હમારે ધ્યાન મેં નહીં આવે તો બાકી આપ ચાહે જીતની બાર પઢો ના. યાને યે જો દ્રવ્ય કર્મ કહે રહે જીસકો હમને જડ કર્મ કહા, યે જ્ઞાનાવરણાદી જો 8 કર્મ હૈ ઉસકી બાત હૈ. અબ ભાવ કર્મ જો કહે રહે વહાં મોહ યાને મિથ્યાત્વ ઔર રાગ દ્વેષ કે પરિણામ, પુણ્યપાપ કે પરિણામ, ઔર તીસરી જો બાત હૈ વહ તો નો કર્મ યાને શરીર મન વાણી. અભી દેખો યહાં તો સિર્ફ શરીર મન વાણી કી બાત લી હૈ, લેકિન કહીં કહીં યહ ભી અપેક્ષા આતી હૈ કે જીસ જીસ પદાર્થ મેં ઇસકી એકત્વ બુદ્ધિ હૈ વહ સારે નો કર્મ મેં આયેંગે. કેસા તો ભાઈ સાહેબ જરા ઠીક બેઠના, દેખો આપ વો ક્યા કાર્પેટ ખરાબ કર રહે હો, કે કાર્પેટ હમારા હૈ માલૂમ હૈ, અપના સમજ કે વાપરો. તો મેરી ઇસ કાર્પેટ મેં એકત્વ બુદ્ધિ હૈ તો વો મેરા નો કર્મ હુઆ, ખ્યાલ મેં, એ મુંબઈ આમચી, ભારત મેરા મહાન, યે સબ નો કર્મ મેં આ ગયે. એકત્વ બુદ્ધિ જહાં હૈ ને ઉસકી, કહીં કહીં યે ભી અપેક્ષા લગતી હૈ, પણ વો અપેક્ષા યહાં અભી નહીં હૈ. અભી ફિલહાલ તો યે તીન બાતો મેં લે, શરીર મન વાણી. હા દેખો ક્યાં કહે રહે, યે લાસ્ટ તીન લાઈન ફિર સે પડતા હું. અંદરમાં દયાદાન વ્રતભક્તિ આદિ જે રાગભાવ થાય તે બાહ્ય વસ્તુ છે. યહાં મૂળ બાત તો શરીર કી ઓર કર્મ કી ન લેતે હુએ ભાવકર્મ કો લ્યા, ઓર યે ભાવકર્મો કો ભી ક્યા બતાએ કે વે બાહ્ય વસ્તુએ હૈ, યાને બાહ્ય વસ્તુ યાને જો આત્મા મેં નહીં હૈ બાહ્ય હૈ ઉસમે ઇસકે એકત્વ બુદ્ધિ હૈ. આ પહેલે તો ઉસકો પૂતગલ કે કહે થે, વો અજીવ મેં ડાલ દિયા થા, ઇસલિયે કહે થે વો બાહ્ય હૈ, क्योंकि एकत्व बुद्धि किसमें हो कर रहा है, यह अज्ञानी जीव कि जो अपनी चीज नहीं है उसमें अपनापन बता रहे, तो इसलिए वो मिथ्यात्व है, अप्रतिबुद्ध है। बात तो वो चल रही ना, तो ये स्वामी जी को बार बार इसी बात पर बहुत उनका प्रहार है या पॉइंट आउट करते हैं, ये राग जो जीव के चल रहे हैं वो उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो जहाँ से समझो यहाँ आए हैं तो वहाँ तो ऐसी मान्यता होगी, तो वो बात बार बार उनके दिमाग में चलती है, तो यहाँ और वो वास्तविकता है, वो तो वहाँ चलती होगी लेकिन हमारे यहाँ भी चलती है, कहाँ हम उसको नहीं मान रहे। क्या कह रहे हैं, अंतरंग मां दया दान व्रत भक्ति आदि जे राग भाव थाई छे ते बाह्य वस्तु छे, केम के जेम आत्मा मां ज्ञान ने आनंद स्वभाव छे, आत्मा का स्वभाव ज्ञान आनंद स्वभाव ही कहते हैं ना, तेम पुण्य पापना भाव तेनो स्वभाव नथी तेथी ते आत्मा नथी। कंक्लूजन देखो उनका कितना क्लियर है, हा? भगवान आत्मा मां अंतरंग मां जे पुण्यपाप देखाय छे ते जड़ कर्म, पुण्यपाप यानी यहाँ भाव कर्म लिया, जड़ कर्म यानी द्रव्य कर्म लिया, और शरीर आदि नो कर्म, ए त्रणे पुद्गल परिणामो आत्मानो तिरस्कार करनारा छे। यहाँ भाव कर्म को भी पुद्गल ना परिणामो बोल दिया, देखा जुओ, शुभ अशुभ भाव ने पुद्गल परिणाम कहा, केम के ते आत्माना अनादर करवा वाला छे, ऊपर लिखा ना तिरस्कार करने वाले, क्यों, उन परिणामों के माध्यम से हम आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, उल्टा तो क्या होगा, वो करने से अपन उसी में लिप्त हो जाते, उसी में अटक जाते हैं, इसलिए वो आत्मा के अनादर करने वाले हैं ऐसा बताया। जे वो रागनी रुचि वाला छे ते वो आत्मानो अनादर करे छे। क्या बताया सब, राग जो राग है ना, राग उसमें जो रुचि रखते हैं वो क्या कह रहे हैं, अपने आत्मा का ही अनादर कर रहे हैं। राग भाव ज आत्मानो अनादर करवा वाड़ो छे, पुण्य पाप रूप भाव कर्म, जड़ द्रव्य कर्म अने शरीर आदि नो कर्म, ए त्रणे पुद्गलनी जात छे, भगवान आत्मा ज्ञाननी जात छे। पुण्य पापना भाव मा ज्ञानना अंशनो अभाव छे, ए त्रणे पुद्गल परिणामो नो चैतन्य भाव मा अभाव छे, ए त्रणे भगवान आत्माना परिणाम नथी, केम के भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी वस्तु हुआ थी एना परिणाम ज्ञान रूप होय, जारे आ त्रणे मा चैतन्यना अंशनो अभाव छे। व्यवहार रत्नत्रे ए शुभराग छे, ए पुद्गलना परिणाम छे, केम के ए राग चैतन्यती खाली छे, यानी उसमें वो चैतन्यपना है नहीं। आवी वात बहु भारे भाई, लोगों ने तो एवं लागे कि आ सोनगढ़ वाला निश्चय थी धर्म ए नवो शोधियो, सेला सट लाइने बैठा छे, सेला सट यानी बहुत आसान जो बात होती है, ऐसा कुछ मान्यता लेके बैठे हैं कि जिससे धर्म होगा, क्या कह रहे हैं सेला सट लाइने बैठा छे, व्रत अने तप मां दुख पड़े कष्ट पड़े एटले सेलो धर्म काढ़ियो, बस आत्मा जानो, आत्मा जानो ए धर्म। यानी ये अन्य लोग जो स्वामी जी ने जिस बात को बताया, यानी अपने आत्मा का ही अनुभव करो तो धर्म होगा, तो कहते इन्होंने बहुत आसान धर्म की कहीं खोज निकाल के रखा है, क्यों, इसमें कुछ करने का ही नहीं है, कि वो ऐसा मानते हैं कि व्रत करने में दुख होता है, तप करने में दुख होता है, तो ये तो बहुत आसान बात है उनके, आत्मा 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 करो हो गया धर्म, ऐसा इनके ऊपर आरोप देते थे, तो वही आरोप उन्होंने यहां बताया, क्या कहा क्या कहते हैं, कष्ट पड़े सामा व्रता ने तप में दुख पड़े कष्ट पड़े एटले सेलो धर्म काढ़ियो, बस आत्मा जानो ए धर्म। अरे भगवान तू सांभ तो खरो प्रभु, तू आत्मा चैतन्य चमत्कार वस्तु छे, ए चैतन्य चमत्कार मा एकाग्र थवू एनु नाम धर्म। ए चैतन्य चमत्कार ने छोड़ी जे दयादान व्रतादि छे ते अचेतन छे, ते ज्ञान स्वरूप चैतन्य नी जात नथी। सीधी साधी भाषा छे, वस्तु आवी छे भाई। अब ये सारी बात फिर दृष्टांत की तरफ जाते हैं। घड़ाना दृष्टांते ए पुण्य पाप आदि भाव कर्म अने द्रव्य कर्म तथा शरीर मन वाणी आदि नो कर्म ए त्रणे मा आत्मा छे, अने त्रणे चीज आत्मा मा छे एवी जेवी जेनी मान्यता छे ते मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अप्रतिबुद्ध छे। ये बात तो क्लियर मतलब समझे ऐसी है ना। परसत्ता नु पोतामा होवापनु मानवु ए मिथ्या तो भाव छे। देखो देखो, हम लौकिक में भी इतने चतुर है कि मान लीजिए कोई हम चार भाई हैं और पिताजी ने कहा कि भाई तेरी ये तेरा हिस्सा ये है, तेरा ये हिस्सा है, तेरा ये हिस्सा, चारों को बांट दिया। और कहीं कोई अपने भाई का हिस्सा अपने में लेवे तो हम उसको क्या कहेंगे, भाई ये चोर है, दूसरे का माल लेता है, और हम लेने भी नहीं देंगे। मेरा हिस्सा में कोई लेता हो तो हम उसको अलाउ भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है कि पर वस्तुओं को ही गपचावे छे ने क्या बोलना, बेन लूट रहा है वो। क्या कह रहे हैं के परसत्तानु पोतामा होवा पनु मानवु, यानी पर की चीज मेरी है, ये माल भी मेरा है और मेरा माल भी मेरा है, ऐसा कहने जैसा हो गया। चार हिस्से किए ना, तो ये मेरा हिस्सा तो मेरा है ही, और हम दोनों भाई है ना, तो ये भी मेरा ही है, ऐसा करके उसका भी उठा लेता है। तो वैसा यहाँ कह रहे हैं परसत्तानु पोतामा होवापनु मानवु, ये मिलता तो नहीं उसको, वो कभी तीन काल में शरीर उस रूप आत्मा रूप होने हुए ये राग रूप जो परिणाम है वह वितराग रूप हो जावे, स्वभाव रूप हो जावे, ये कर्म जो पुद्गल है वह जीवमय हो जावे, ऐसा तो कभी तीन काल में होने वाला नहीं है। पर ये मानता है, ये मान्यता का फल जो है खोटा खोटा भाव का, वो तो कैसा है आप जानते हैं कि नहीं। ये देखो, ये जो स्वयंभू रमन समुद्र है ना, उसमें वो महामत्स्य होता है। हाँ, महामत्स्य यानी वो महामत्स्य कैसा है कि उसकी डायमेंशन जो है वो 12.5 करोड़ योजन घन योजन, योजन घन नहीं घन योजन, ऐसा इतना बड़ा उसका, यानी वो खाली ऐसा मुंह खुला करके सो जाए तो ऐसा वो कर कर ऐसा श्वास श्वास कर तो मानो, तो क्या है हजारों मछलियां उसके मुंह में जाती है बाहर निकलती है, मुंह में जाती है बाहर निकलती है, ये पानी है जिधर उधर। तो उसके आंखों में एक तंदुल मत्स्य नाम का इतना सा छोटा प्राणी होता है, तो उसके आंखों में इधर, तो वो सोचता है कितना मूर्ख आदमी है, अरे इतने जोर से जरा सांस लेवे तो आधे तो मछलियां इसके पेट में चले जाए, और मुंह बंद करके बैठे तो इसका पेट ही भर जाएगा। और ये तो क्या है, ऐसे ही आते हैं जाते हैं कोई चिंता ही नहीं करता है। अब वो जिसके पेट में जाके वापस निकलते हैं उसको तो कोई किस बात का लेना देना है नहीं, और यह समय समय पर ऐसा परिणाम करता है, भाव करता है कि मैं इसकी जगह होता तो आज यहाँ एक भी नहीं बचते। तो वो तंदूर मत्स्य को तो सातवें नरक का भाव मिलता है में। तो वहां ये कह रहे हैं कि ये पुरसत्तानु पोतामा होवापनु मानवु, ये भी वहीं ले जाने वाला है मिथ्यात्व के कारण। ये जो परिणाम कर रहा है ना वही तकलीफ है। कोई कहे के व्यवहार थी धर्म था है। पन भाई व्यवहार ए शुभरागनी क्रिया छे, अने शुभराग छे એ અચેતન છે. જો શુભરાગ અચેતન બતાવે ને, અભી પૂતગલ કે બતાવે ને, પૂતગલ પરિણામ છે. ચેતન આત્મા અચેતન પૂતગલ પરિણામમાં છે, અને પૂતગલ પરિણામ આત્મામાં છે એવી માન્યતા અજ્ઞાનીની છે. ભલે ને નગ્ન સાધુ કેમ ન હોય, રાગના પરિણામમાં હું છું અને મારામાં રાગના પરિણામ છે એવી માન્યતા જો તેને હોય તો તે અજ્ઞાની છે, અપ્રતિબુદ્ધ છે. યાને બાહ્ય મેં કોઈ ભી દશા લી હો વો તો આત્મા કા અનુભવી નહીં હોગા. દેખો મેં અભી આજ મુજે ક્યાં ક્યાં બાતે યાદ આ રહી. જબ મેને 1962 સાલ મેં યે નિર્ણય લિયા કે અભી સે ધંધા પાણી બંધ કરેંગે, ઘર મેં હી બેઠેંગે ઓર યહાં શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય આદિ કરેંગે. તબ હાજી મેને ક્યાં બતાયા, 62 બતાયા, નહીં નહીં ઉસ ટાઈમ મેં તો નહીં, 92 મેં. તો ક્યાં બાત હોઈ, યે મનોહર જોશી જો હૈ, યે લોકસભા સ્પીકર જો, વો મેરા દોસ્ત, તો ઉસકો બોલા કે ભાઈ એસા એસા, ઉસકો સમજ મેં આયા કે યે મેને, મેં ઉસકા ફેમિલી ડોક્ટર જૈસા ફોટોગ્રાફર થા, કુછ ભી ઘર કી કામ હો તો મુઝે મિલા બુલાતા થા. તો રે રે મેરે બેટી કી શાદી કરકે ફિર તું સંન્યાસ વગેરે કુછ લેના, મેરી બેટી કી શાદી હોને દો, ફિર અપન દોનો મિલકે હિમાલય જાયેંગે. વો ક્યા બોલ, હિમાલય ક્યું, તો વહાં જો કુછ તેરે કો સાધુગીરી કરની હૈ તો મેં ભી તેરે સાથ આઉંગા. તો યહાં કહેતે બાહ્ય મેં કોઈ ભી દશા તુમ લો, ઉસસે કુછ લેના દેના નહીં હૈ. જો અંતરંગ સ્વ કા જબ તક અનુભવ નહીં હૈ, એ પર મે હી મેરા અપન માન રહા હૈ, પર હી મેરે હૈ, મેં ઉનમે ઓર વો મેરા હૈ. વૈસે યહાં કહેતે કે નગ્ન દિગંબર સાધુ ક્યું નહીં હુઆ હો, બાહ્ય મેં દશા તો સાધુ કે લિયે, લેકિન રાગ મેરે મેં હૈ ઓર મેં રાગ કર સકતા હું, યે મિથ્યા માન્યતા હૈ. તો બહુતાંશી લોકો કી એસી માન્યતા હૈ કે મેને ઘર બહાર છોડા, મેને ધંધા પાણી છોડા, મેને કુછ બહુત બડા કિયા. યહાં તો આચાર્ય કહેતે તેરા થા કબ કે તુને છોડા ઉસકો, ये मान्यता ही. यहां तो समझा रहे भाई, आत्मा में तो त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, ये बाह्य पदार्थ का त्याग नहीं कर सकता है ना ग्रहण कर सकता है, इन दोनों से शून्य है. पर नहीं साहब क्या कहते हो, हमने पूरा, अरे इतना बड़ा धंधा था सब छोड़ छाड़ के हम घर में बैठे. अरे वाह रे वाह, तू छोड़ा, और ये कभी कभी छोड़ा साहब, अभी इतने साल हो गए तो अभी तक तेरे को याद है कितना पैसा कमाता था, कितना मिलता था, आज कितना कमाते होंगे, तो तूने क्या छोड़ा, हाँ सब मन में वही के वही रखा है. वो कहते वो छोड़ना नहीं है. तो यहाँ क्या समझा रहे, देखो ये नीचे से पांचवी लाइन है, छठी लाइन जो भी है. રાગના પરિણામમાં હું છું અને મારામાં રાગના પરિણામ છે એવી માન્યતા જો હોય તો તે અજ્ઞાની છે, અપ્રતિબુદ્ધ છે. યહાં તો દ્રવિલિંગી મુનિ કી બાત કર રહે, મેને વો છોડ કે જનરલ બાત કી હૈ. તો યે તો હમ અપને પે ઘટાએ કે ક્યા મેં એસા માનતા હું કે રાગ મારામાં છે અને રાગના પરિણામ જે છે તે જ હું છું. જો કહેતે કે રાગ મેરે મેં હૈ, नहीं नहीं तुम तो भगवान स्वरूप हो भाई, क्या बात करते हो साहब, अरे एक एक मिनट में हमारे कषाय निकलते हैं बाहर और हमको भगवान कहते हो. यानी मैं कषाय मैं हूँ, कषाय मेरे में है, क्या हमने ऐसा नहीं माना है. जब तक ये तेरी मान्यता है तब तक कहते हैं तू अप्रतिबुद्ध है. ये बिल्कुल ऐसा, हम एक एक बात ऐसी क्या कहते हैं, लौकिक की बात हमारी आंखों के सामने लाएं तो हमें कौन, हम कौन से स्टेटस में है, कौन से स्टैंडर्ड में है, वो ख्याल आता है. ख्याल ऐसा कहेंगे कि राग मैं हूं और राग मेरे है तो अपने को बिल्कुल, लेकिन जब हम वैसा आचरण करते हैं, वैसा बोलते हैं और मानते भी हैं तो फिर पता लगता है कि अपन कहाँ खड़े हैं. ख्याल में है? तो ये जो बात बता रहे हैं ऐसे आलतू फालतू बात नहीं है, कितनी बढ़िया बात बताई, जो इंटू इन्वर्टेड कॉमा है, राग ना परिणाम मा हूं छू, अने मारा मा राग ना परिणाम छे। क्यों साहब आप रोज आते नहीं है, क्या बात है, शू करिए साहेब, घर में आवी आवी तकलीफ छे, छोकराओ छे, छोकराओना छोकराओ छे, बधाने जोवा पड़े, अरे बधाने जोवा पड़े तो तेरा राग बाकी है, इसलिए तो तू रुका है। तू ये मानता है कि मैं ये मेरे बच्चों को या मेरे बच्चों के बच्चों को, मेरे जो कुछ घर के सदस्य हैं सबको मैं संभालता हूं, मैं उनका उनकी परवरिश करता हूं, ऐसी हमारी मान्यता है, इसलिए हम अटके हुए। यहां तो कह रहे कि भाई ये तो अभी तो क्या बात करो, यहां तो लिखा है कि ये जो कुटुंबीय है वो तो धतुरों की टोली है, ख्याल में उसको वो बहन आ जाती है, कौन सी, एक कारंजा में एक है प्रज्ञा जी डोनगांवकर, वहां की बहुत बड़ी समाज सेविका है, तो ऐसी बात निकली। मैंने कहा नहीं साहब, हमको तो समाज में रहना है, यानी वो कुछ निकली हुई बात जो कुछ, तो मुझको तो वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि समाज में रहना है तो ये इसको मदद करो, उसको मदद करो, उसको मदद करो, सब देखना ही पड़ता है, हमको इतने स्कूल की तरफ देखना पड़ता है, इतना फला देखना पड़ता है, तो ये बाकी बात करने को किसको टाइम है। मैंने कहा कि अगर आपको मनुष्य पर्याय में आप आए, मान लो तो मनुष्य पर्याय में आए, तो कौन से दिन आप समाज के बाहर रहेंगे, हर समय तो समाज में ही आपकी पैदाइशी होगी, और हर वक्त तुम कहेंगे कि समाज को मुझे देखना है, तो फिर स्व की तरफ कब आप ध्यान रखोगे। वैसी ये बात है, ये राग की रुचि जो है वो तो कब नहीं रहेगी, क्योंकि तूने ऐसे कर्म बांधे हैं तो उसके तरफ तू आकृष्ट होगा, राग के परिणाम होंगे ही होंगे, लेकिन वो राग मेरे में है ऐसा तू मान रहा है, यहां गड़बड़ है, ख्याल में। तो वो वही बता रहे कि नीचे से चौथी लाइन, आहा हा कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम, एटले मोह राग द्वेषादि भाव कर्म अने जड़ कर्म यानी या द्रव्य कर्म तथा नो कर्म शरीर आदि ए बधी बाह्य वस्तुओ छे, आ बाह्य वस्तु मां हूं छू अने बाह्य वस्तु मारा मां छे एम माननार, अभी नया शब्द लाया बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि छे। अहो आचार्य देवे सत्य ने समझावनारी मीठी अने मधुर टीका करी छे। क्या हमको मीठा लगता है कि पहले देखो हमको तो जान लेवा लगता है, कितनी कठिन बात कितनी करोड़ कठोर बात कह रहे हैं, अब स्वामी जी कह रहे कितनी मीठी है ने मधुर छी, क्योंकि जिसको वो बात रुचि है वो तो लगेगा ही उसको, अरे नहीं ये तो मेरे हित की बात है, और कहीं किसकी मतलब फीलिंग हर्ट हो गई हो या मान कषाय टूट गया हो वो तो उसको कहेगा चलो 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 इससे दूर हटो, नहीं अपन इनको सुनना ही नहीं है, इनको पढ़ना ही नहीं है, जाने दो। लेकिन स्वामी जी तो कह रहे अहो आचार्य देवे सत ने समझावनारी, लेकिन सत समझने की रुचि हो तो उसको मीठी और मधुर लगे, ऐसी बात है। भगवान बहिरात्मा कोने कहिए अने अंतरात्मा कोने कहिए के जे अंदर रागना क्रियाना पुण्य पाप रूप दया दान भक्ति व्रत आदि रूप भाव थाय छे ते पुद्गल परिणाम छे अने बाह्य छे तेमा हूँ छूं अने तेथी मने लाभ छे एम माननार बहिरात्मा छे। बहिरात्मा यानी जो उसका ज्ञानोपयोग हमेशा बाह्य वस्तु में चिटका हुआ है, उसमें ही लगा हुआ है, अंतरंग में देखने को तैयार नहीं है, उसको बहिरात्मा कहा। तो उन्होंने कौन सी बात बताई कि जो राग की क्रिया है, देखो ये थोड़ा सा हम अगर आपको चाहिए तो यह द्रव्यलिंगी मुनि पर भी हम यही उसके लक्षण देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहते हैं कि अंदर रागनी क्रियाना एटले पुण्य पाप रूप दया दान भक्ति व्रत आदि रूप भाव थाय छे ते पुद्गल परिणाम छे अने बाह्य छे तेमा हूँ छूं अने तेथी मने लाभ थाय एटले राग करवाथी मने लाभ थाय एम माननार बहिरात्मा छे। बहु आकरू पड़े, पेला भक्तिवाला एम कहे के भक्ति करो एम करता करता धर्म थशे, आ दया पाड़वावाला एम कहे के परनी दया पाड़ो तेथी धर्म थशे, अने शरीरना बढ़िया होए याने शरीर में जो स्ट्रांग होवे याने शरीर की जिसमें ताकत होवे ऐसे कोई जो होते हैं तो शरीरना बढ़िया होए तो एम कहे उपवास आदि तप करो एम करवाती धर्म थशे। आ त्रणे मंदराग्नि क्रिया छे, आ मंदराग्नि क्रिया थी लाभ मानना रागनि रुचि वाला बहिरात्मा छे अज्ञानी छे। अभी क्या बात होती है कि जब जब हम पर्युषण पर्व में जाते हैं तो हर जगह जाएं तो आज मेरा उपवास है, मैं 3 दिन से उपवास कर रहा हूँ, मैं 7 दिन से उपवास कर रहा हूँ, और हम तो 2 टाइम भोजन करें, 2 टाइम मतलब 1 टाइम नाश्ता दूध आदि, कैसा पंडित है, 2-2 टाइम खाना चाहिए इसको। और वो क्या मानते हैं, हमने इतना उपवास किया तो हम धर्म क्या धर्म कर रहे हैं और ये तो अधर्म कर रहे हैं, ये क्या सिखाएगा। मतलब लोगों की मैं देखने की जो दृष्टि है ना, तो ये बिल्कुल स्वामी जी वही बात बता रहे हैं। शरीर ना बढ़िया यानी किसी किसी का शरीर ऐसा होता है कि भले वो 8-8 दिन 10-10 दिन भी नहीं खावे नहीं पीवे तब भी वो रह सकता है, और कई जैसे हमारे जैसे हो जाए तो उसको तो भूख सहन नहीं होवे, ख्याल में है ना, तो वो समझते ये अधर्मी है और हम बहुत धर्मी है, ख्याल में। मैं तो मेरी बात बताऊंगा, आप मानो या मत मानो, क्योंकि मैं किसी भाई का नाम लूं तो नाराज हो जावे, ख्याल में है ना। तो ये क्या समझते हैं कि शरीर की क्रिया करने से राग की क्रिया करने से, राग में तो 2 उन्होंने ये दिया, एक भक्तिवाड़ा छे अने बीजा परनी दया पा रहे और तीसरा शरीर न बढ़िया, ये सब बाह्य क्रिया करने में ही धर्म है, धर्म होता है ऐसा मानते हैं। तो ऐसे उनको कभी डायरेक्टली समझाने के लिए मत जाना, ख्याल में। देखो आप 2-4 साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं है कभी हुआ ये पार्ला में सांता क्रूज में किधर भी है या अंधेरी के आसपास, कोई कोई साधु मुनि महाराज कोई आए थे, 302 उपवास किए कि 303 हमको सब लोग बोलते हैं आप जैन है, बोले हाँ सर, वो जैन महाराज का तुम दर्शन करने को नहीं गया, अरे वहाँ तो इतनी भीड़ है, इतना ये लगा है वो लगा है तांता लगा है उधर तो लोगों का, और तुम यहाँ बैठे हो मूर्ख लगते हो। हमने कहा आईने में देखा जैसा लगता होगा तुम्हें, अरे भाई 302 उपवास करने से कोई धार्मिक बनता हो तो नरक के सारे धार्मिक होंगे, 33-33 हाँ अभी क्या मालूम हम कहाँ देखने गए। फिर मैं तो ये नक्की जानता हूँ कि नरक में कम से कम 10,000 वर्ष, तुम तो 302 की बात कर रहे हैं, वहां तो कम से कम कितना 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33,000 वर्ष तक एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। बोलो तो कैसा उपवास करते होंगे, शरीर ना बढ़िया, अरे अंदर से तो जल रहे कि ये खाऊं वो खाऊं, पूरे विश्व का खाना मिल जाए तो अभी खत्म कर दूं, ऐसी उनके तो अंदर से वांछा है इच्छा है और उसकी तो बात छोड़ो, स्वर्ग में क्या होता है, जो 33 सागर वाले जो आयु के धारी है वहां पे सरवार सिद्धि आदि में, उनको तो 33,000 वर्ष के बाद भाव होता है कि अभी कुछ मैं ग्रहण करूं खाने का, तो खाली यहां से ऐसा करेंगे तो अमृत यहां से कंठ से झरता है पेट भरता है, बोलो अभी कहाँ जाना है आपको? 33 सागर उधर के इधर, वहां कम से कम 33,000 वर्ष के बाद एक दफे तो कुछ तो मिलता, वहां तो कुछ नहीं। और ऐसे देखो देखो अभी आपको बताता हूँ, क्या बताए बेन आपको अभी, ये इस मनुष्य पर्याय इस जीव को आज तक अनंत बार मिली है भूतकाल से, और जितनी अनंत बार इसको मनुष्य पर्याय मिली है उससे असंख्यात बार नरक की पर्याय मिली है, और ये अनंत असंख्य बार जितनी ये मिली है उससे असंख्यात बार देवगति की पर्याय मिली है। यानी आप कितने भूखे होंगे जरा सोचो तो से, क्या है इस जीव को पता ही नहीं है कि हम कहां कहां कैसे कैसे घूमे फिरे हैं, और ये बाह्य क्रिया करने में धर्म मानता है, ये तकलीफ है ना अपनी बात तो कौन सी है, ये बाह्य क्रिया में अटके हुए क्योंकि मंदर अग्नि क्रियाति लाभ मानना रा रागनी रुचि वाला। अभी किसको बहिरात्मा कहा, मंद परिणाम करने वालों को नहीं कहा हो कि वो मंद परिणाम जो हो रहे वो जो राग चल रहा है उसमें रुचि रखने वाले, क्योंकि उसका ध्यान किधर है, स्वमे है या राग में परमे है। हम तो बिल्कुल क्या बोलते हैं आप, मैथमेटिक्स जैसा सॉल्व करते हैं ना वैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बात बिल्कुल हमारे समझ में आए ऐसी है। तो कहते आहा हा आ तो दांडी पीटी ने कहवाई छे के, दांडी यानी समझे क्या प्रभु, दवंडी पीटती है ना अपने यहाँ, दांडी पीटी ने यानी पहले के जमाने में राजा लोग क्या करते थे, माइक बाइक कुछ नहीं था उनके पास, तो ऐसा दो चार आदमी जाते थे, एक डम 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 आवाज करे, सब जनता तैयार हो जाए, फिर सबको बोला ऐसा 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 है राजा के आज बेटा हुआ है, सब मिठाई खाने को आ जाओ। तो दांडी पीटी ने यानी बहुत जोर जोर से सबको सुनाई देवे ऐसा, आई तो दांडी पीटी ने कहवाई छे के भगवान जिनेन्द्र देव नो कहेलो धर्म ए अलौकिक चीज छे, एवी चीज बीजे क्यांय नथी, पन एना घरमा एटले दिगंबर जैनमा जेने जैन जन्म लीधो छे एने खबर नथी। ये सबकी इज्जत निकाल के हाथ में दे दी देखो ऐसा मत समझना कि वो श्वेतांबरों के खाली ऐसा दूषण देते थे, अरे कहते कि जिनके घर में ये बात है उनको मालूम नहीं है कि मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैं इतना वैभवशाली हूँ, मैं इतना महाभाग्यशाली हूँ, उनको नहीं मालूम। तो यहाँ लिखते हैं ना पन एना घरमा एटले दिगंबर जैनमा जेने जन्म लीधो छे एने खबर नथी, शू શું ખબર નથી કે ભગવાન જિનેન્દ્ર દેવનો કહેલો ધર્મ અલૌકિક છે એને ખબર નથી એમ કે છે। આય પણ ત્રણ વાત કહે છે, હવે એ જો ત્રણ વાત હે વો હમ કલ દેખેંગે હા, ક્યોંકિ એ તો પૂરા તો હોના નહીં હે। દેખો કભી ભી મેં તો એ જરૂર કહુંગા, સ્વામીજી કભી પાર્શિયાલિટી નહીં કરતે થે, કોઈ પક્ષપાત કરે या ऐसे में, लेकिन जो सत्य बात है वो कहने में कभी कभी ढिलाई नहीं रखते थे। ख्याल में उनके तो जितने गुणगान गाए कम है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकण सदा देता हूँ।